छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहुरे, संतोक सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूरत ना होती जो पै करुणा निधान की। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक दा दसवां टिकाणा, गुरजोति दा दसवां घर, आप दसवें पातशाह कहलाए। अगम्मी छाप आपने छोड़ी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने शिष्टव शिष्टत्व मनुख दे अंदर उजागर करन दी कोशिश की थी। तू सिख है, तू सिख है, तू सिख है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तक शिष्टत्व संपूर्ण हो गया। भाव सिख ने जान जान के ए जान लिया कि हे प्रभु, मैं नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। तू मेरी जानन दी सीमा तो अग्गे है, बहुत ज्यादा है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम, तू ते सागर दी तरह है पर मेरी मत समझ प्याले दी तरह है। सागर प्याले विच किस तरह होवेगा, स्यागर प्याले विच नहीं समा सकदा। जान जान के मैं ए जाने है, मैं कुछ नहीं जानदा, कुछ नहीं जानदा। अगर ऐसा किसी दे अंदर अनुभव पैदा हो जाए, मैं नहीं जान सकदा, तो उसने असल तत्व नु जान लिया। और जेड़ा दावा करे मैं जान लिया, मैं सब कुछ जान लिया, तो गुरु नानक कहंदे ने सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। इस संबंध च एथिन दे एक प्रसिद्ध संत सुकरात दी गाथा याद आउंदी है। वो अपनी आप बीती दे च लिखदा है, जद मैं बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दिया होया, अक्सर मैं डींगा मारदा सी कि बच्चियां नूं मैं रोब नाल कहिंदा हुंदा सी, दबाव पूर्वक कहिंदा सी मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा। इस तरीके नाल बच्चे मैथों भयभीत रहिंदे सन और मैनू मुखिया करके समझदे सन। ए महान दार्शनिक संत कहिंदा है, जद मैं जवान होया तो जवानां विच बैठ के मैं ए कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, जो मैं नहीं जानदा। अगां चल के लिखदा, अज मैं बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया और मैं ऐलानियां कह रहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मनुख दे जीवन भर दी जानकारी सागर दे विचों मिली एक बूंद तो ज्यादा नहीं है, इस तो ज्यादा नहीं है। सिख होना उस दिन संपूर्ण हो जाता है। किस दिन? जे दिन सिख 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 के सिख सिख के जान जान के कह देंदा है, मैं नहीं जान सकदा, नहीं जान सकदा। ए प्रभु तू असीम है, मेरी जानन दी समर्था सीमा विच है, मेरा वेखना सीमा विच है, मेरा सुनना सीमा विच है, मेरा बोलना सीमा विच है, मेरा समझना समझाना सीमा विच है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜਾਇਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਉਪਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਚ ਤਖੱਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤੱਤਵ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਆਇਓ ਆਪ ਦੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਰਚਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਰੰਗਰੇਟਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਜੋ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਰ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੀਸਗੰਜ, ਗੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਿਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? हालत वेख के चांदनी चौंक विच दड़ पे है, सीस पे है। जद सिपाही सिखां दे घरां च पहुंचे ने अपने गुरु दा धड़ ले आओ, सीस ले आओ। दरवाजे बंद कर दिते और कह दिता, असी सिख नहीं हां। बीज नास नहीं आंदा, रंगरेटा अगे आया, लखी शाऊ नजारा अगे आया। एक ने सीस चुकया है, एक ने धड़ चुकया है। एक ने अपने सीस दी बाजी ला के सीस नू आनंदपुर साहब पहुंचाया है। एक ने अपना सब कुछ जला के धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बाकी दे शरीर दा दास सत्कार कीता है। अपना घर जला के, अपनी हवेली फूंक के, अपना धन संपदा नू जला के सतगुरु दा अंतिम संस्कार कीता है। तो उस थां ते भी बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रकाबगंज। जद सुनिया बालक गोबिंद राय ने सिख ने ते कह दिता सिखां ने, असी सिख नहीं हां, उस वक्त गरजदे होया जो बोल उन्हां दियां रसना तो निकले ने कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज विच इस तरह अंकित कीते ने। अब एक ऐसो पंथ बनाओ सगल जगत विगे बहु विद भाओ, रंगरेठे दे बोल सुन के सुन श्री कलगी धर ऐसे, बोले गरजत जलधर जैसे, जैसे बदल गरज देने, इस तरह सतगुरु गरजे। सुन श्री कलगी धर ऐसे, बोले गरजत जलधर जैसे, अब एक ऐसो पंथ बनाओ सगल जगत बिखे बोग बाओ, लाखों नर जग के एक थाए, तामे मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसों करे। मैं ऐसा स्वरूप बना देंगा सिख दा, लखां मनुखां विच सिख खड़ा होवेगा, उस कोल पुछण दी लोड़ नहीं रहेगी तू सिख है कि नहीं, उदा स्वरूप दस देगा, उदी शक्ल दस देगी। यथा बगन में हंस न छपे, गिरजन विखे मोर ज्यों दिखे, त्युम ना ना बेखन के माई, मम सिख को सगले फरकाई। इस तरह सिख दा स्वरूप जो बनाया, नाम रख दिता सिंह, तखल्लुस सिंह, सूरवीर। आज तक ऐसा से कि जो सूरवीर सन वो संत नहीं सन, और जो संत सन वो सूरवीर नहीं सन। संता नाल भरिया होया ये देश, पर फिर भी ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, क्योंकि संत सूरवीर नहीं सी, संत सिंह नहीं सी, संत सिपाही नहीं सी। सिख ते संत है, इसे ही संत नु सिंह बना देता, सिपाही बना देता, सेंट सोल्जर ए रूप देता धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आपदा प्रकाश पटने दे छवया, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जद पूर्व दी यात्रा दे सन, और ए सारा प्रसंग, ए सारी गाथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप लिखते ने। अब मैं अपनी कथा बखानो, तब सादत जय बिदमोय आनो, तातम आत्मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। मेरे माता पिता ने घोर साधना की थी, और ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਵਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੈਂ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਂਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਨ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਹਮ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਬਹਿ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਪੂਰਬ ਦਾ, ਜਦ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਬ ਹਮ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਬਹਿ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤੈ, ਤੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਉ ਲਇਓ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗਰਾ, ਬਨਾਰਸ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੋਸੋ ਦੀ ਸਤਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਡੋਰੇ ਦਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਕਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰਫ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਬਈ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਜਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪੂਰਬ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਬਲਕਿ ਪਟਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾਲ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਡੋਰਾ, ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਦੀ ਚੌਖੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? मैं उस रब्बी नूर दे दर्शन करन आया जो इस घर दे च प्रगट होया। माता गुजरी नू जाके दस्या एक फकीर आया है, बालक दे दर्शन करना चाहता है। माता गुजरी जी पहले ते सहमे, फिर बालक नू गोद विच लिया के चौखट ते आए। ये फकीर भी रमजी फकीर सी। इस तरह दो मुठियां अगे कीतियां, अंदरों सोच के एक हिंदू दी एक मुस्लिम दी, देखदे आं ये हिंदुआं दा पीर है कि मुसलमाना दा, ये हिंदुआं दा गुरु है कि मुसलमाना दा वली अल्लाह, देखदे आं। इंज दो मुठियां अगे कीतियां, बालक गोविंद राय ने दोहां ते हथ रख दिता, अश्क बाहर हो गया। भीखण शाह पुछिया सी भीखण ने, हिंदुआं दे गुरु हो या मुसलमानां दे फकीर हो? दोहां ते हथ रख के कहा, असी सांझे मनुख हां। सूरज दा चानणा ना हिंदू आउंदा है ना मुसलमान आउंदा है, हिंदू दे घर भी चानणा करदा है, मुसलमान दे घर भी चानना करदा है, असी सांझे हां। हमेशा पैगंबरी पुरश सांझे आउंदे ने, और जो सांझे नहीं आउंदे वह संत नहीं आउंदे। इसनू इस तरह भी बयान किया जा सकता है, जो सच है वह केवल मेरा नहीं, और जो मेरा है सिर्फ मेरा है वह सच भी नहीं है। जो परमात्मा है वह सिर्फ मेरा नहीं, और जो सिर्फ मेरा है वो परमात्मा भी नहीं। जो वास्तविक संत है सिर्फ मेरा नहीं, और जो केवल मेरा ही है वो संत भी नहीं है। जो सूरज है वो सिर्फ मेरा नहीं सारिया का है, और जो सिर्फ मेरा है वो कोई दीपक होवेगा सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। भीखण शाह ने उस नन्ने नन्ने चरणा देते अपना सिर झुकाया है, सजदा किया है, और धन धन कह के वापस मुड़े है। बालक रूप देच गोविंद राय ने पटने देच अपनी छाप छोड़ी। थोड़े जिया वड्डे होए, पंज छे वरिया दे होए, गंगा दे तट ते खेडन जाया करते सन। अज भी घाट बनया होया गोविंद घाट पटना साहब दे। एक दिन माता जी ने हथां विच दो सोने दे कड़े पहना दिते, जिन्हां विच हीरे जड़त सन, नीलम जड़त सन, बड़े बेशकीमत। वापस आए तो हाथ विच एक कड़ा सी, दूजा ने। माता गुजरी जी पुछदे ने, बेटा दूजा कड़ा किथे सुटिया? चूंकि गंगा तट ते खेडण वास्ते गए सन, तो माता जी गंगा दे तट ते लिया है। दसो किथे गिरया है, किथे सुटे है? दूजा कड़ा उतार के गंगा च सुट के आख्या, उत्थे सुटे है। इत्थों ही पता चल गया ये बालक निर्लेप है, धन दी पकड़ नहीं, संसार दी पकड़ नहीं। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा मूल संदेश भी उपदेश भी यही है, रे मन ऐसो कर सने आसा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास होण लई, निराश होण लई अक्सर त्यागी लोग जंगलां जांदे रहे ने, ताकि मन निराश होके उदास होवे, और इस तरह सन्यास प्रफुल्लत होवे, सुन दे समा सकीए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, बन से सदन सब है कर समझो मन ही माए उदासा। बन नो ही घर नो ही बन समझो, बन से सदन सदन नो ही बन जैसा समझो, अपने घर नो ही उजाड़ समझो, और घर दे जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ है ऐसा समझो। आरजी रहना है, वक्ती रहना है। जय ग्रह बन समसर किया, गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा कहें, जिन्हों घर उजाड़ दिखाई देता है, धन संपदा उजाड़ दिखाई देती है और मन निराश होके उदास हो गया है, सही मैंने अच वही राजयोगी है। घर दे च रहिंदे होया, घर दे च नहीं, परिवार दे च रहिंदे होया निर्लेप, धन संपदा दे च रहिंदे होया निर्लेप, ऐसा उपदेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने शब्दां दे राही जगत दी झोली विच पांदे। रोज रोज दे बाल लीला दे कारनामे भी मन नूं मोहण वाले सन, मन ते प्रभाव पाण वाले सन। सहजे सहजे जद आप थोड़े होनहार होए तां फिर सतगुर आप कहंदे ने, मधुर देश हमको ले आए, भांत भांत दईयन दुर लाए। जिसनों असी अज कहने हैं पंजाब, आब कहने ने पानी नू, पंज आब पंज दरियावां दा इलाका, ए अफगानी लोगां दा दित्ता होया नाम है। पंजाब दा पुराना नाम आदि नाम सी सपत सिंधु, सत नदियां दा देश, घाघरा नदी और दरियाए सिंध ते पंज दरिया, ए सतलुज ब्यास रावी चनाब जेलम। इना सत दरियावां दे हिसाब नाल इस इलाके नूं सपत सिंधु कहंदे सन, और इस इलाके दे वसण वालियां नूं भी सिंधु कहंदे सन। सस्सा सा दा उचारण हुण लोग नहीं कर सकदे सन, जद ओ इत्थे आए सा नूं हा नाल उचारण करदे ने, जैसे पोलैंड दे लोग, पोलिश लोग हा दा उचारण जा नाल करदे ने, जे नाल करदे ने, एच दा उचारण जे नाल करदे ने, हा दा उचारण जा नाल करदे ने। अज भी अगवानी खा धा ढा हा इस दा उचारण नहीं कर सकदे, अगवानी भी वो का दा उचारण कर सकदे ने, खा दा नहीं, दादा कर सकते ने, ढादा नहीं, अज भी नहीं कर सकते। हूँ लोग सादा उचारण नहीं कर सकते सन, सिंधु नू उन्होंने हिंदू किया। एक इतिहास के मुताबिक ये 1500 साल पुराना शब्द है। इस तो पहले देश दे वासियां नू कौल ते द्रावड़ कहंदे सन, सूर्य बंसी कहंदे सन, चंद्र बंसी कहंदे सन, सिंधु तो हिंदू शब्द बनया, और ये देश दे व्यापक लोगां नाल जुड़ गया। सपत सिंधु सत नदियां दा देश, सहजे सहजे अगवानियां दा आना होया, और ये इन्हां पंज दरियावां दी तलहटी च वसे, राजपाठ चलाया, इन्हां ने नाम पंजाब रखिया। सपत सिंधु ते पंजाब नाम तो पहले विचकार दरम्यानी हालत विच एक होर नाम प्रचलित होया, मधुर देश, मिठा देश, मैदानी इलाका सी, दरिया सन, जरखैज सी, उपज बहुत ज्यादा सी, और इंज कह लो इस इलाके दा भारत देश दा एक संपन्न इलाका हमेशा रहा है, ए सपत सिंधु, ए मधुर देश, ए पंजाब। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने, मधुर देश हम को ले आए, भांत भांत दईयन दुर्लाए। तरह तरह दियां दाइयां ने मेरी पालना की थी, दुलारिया मैनू, लाड़ दिता, और इस तरह असी वड्डे होंदे गए, वड्डे होंदे गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब देश ते निगाह मारी, आपनू दिखाई दिता देश गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। आपने देश दी आजादी दा जज्बा दिता है। ये पहले रैबरी पुरुष प्रभु दे भगत ने, परदेश भगत ने, आत्मज्ञानी ने, परदेश भगत ने, वक्त दे अवतारी पुरुष ने, परदेश भगत ने। ऐसी छाप उन्होंने इस देश नूं दित्ती। संग्रह करना शुरू कीता ऐसे लोगां दा जिन्हां दे अंदर देश प्यार दा जज्बा सी, उन्हां नूं इकट्ठा करना शुरू कीता। सिंह नाम ते आपने दे ही दित्ता सी, सिंह, सूरबीर, शेर। पर ऐसा शेर, ऐसा सिंह जो संत है, संत है। असी भारत दे प्राचीन मंदरां जाइए, देखदे हां बाहर गऊ दियां मूर्तियां ने, शेरां दियां मूर्तियां ने, अंदर किसे देवी देवते या अवतार दी मूर्ति है, लेकिन बाहर गौआं दियां मूर्तियां ने, शेरां दी मूर्तियां ने। देख के हैरानगी होंदी है। इत दोवें पशु ने, पर पशु होंदे होया बहुत वड्डा गुण रखदे ने। किसी भी भले मानस मनुख का उदाहरण देना होवे, असी कहने ते गऊ वर्गा है, बिल्कुल गऊ है। पर किसी सूरबीर बहादुर की तशबीह देनी होवे तो असी कहने ते शेर है, ये ते शेर है। दरअसल ये प्रतीक है मंदिर दे जाण दा, भगवान तक ओही पहुंच सकदा है जो गऊ की तरह भले मानस होवे और शेर की तरह सूरबीर होवे, साहसी होवे, ओही भगवान तक पहुंच सकदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज पहली जोत ने जद देखिया, जरवाणे हमला आवर शेरां दी तरह आउंदे ने और भारतवासी सिर्फ गऊ ने चीर चीर के खाई जांदे ने, खाई जांदे। महाराज फरियाद भी करदे ने, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, ये गुरु नानक दी बाणी है। ऐसी फरियाद पै करदे ने। सतगुरदेव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, रजा दे च रहण वाला पुरुष, बाणे दा उपदेश देण वाला पुरुष ऐसा कहंदा है, मेरे मन विच रोस पैदा होया है। क्यों? रोस ते पैदा ही नहीं होना चाहिदा, बाणे च रहो। तो महाराज कहंदे, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। ताकतवर शेर जे शेर नू मारे ते कोई हर्ज नहीं, पर ताकतवर शेर गौआं दे वक्ते टुट पवे। सकता सी मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई, तो मैं मालिक दे अगों फरियाद करांगा, शेर ते गऊ दा मुकाबला नहीं है। शेर दा जबड़ा, पंजे, नौकीले नाखुन ए गऊ दे कोल नहीं है, शेर ते गऊ दा मुकाबला नहीं हो सकता। शेर आंदे रहे, गऊआं नू खांदे रहे। गुरु नानक दी दसवीं जोत, दसवां महला, दसवां टिकाणा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता, हुण मजबूरी है, हुण मैं इन्हां गऊआं नू ही शेर बनावांगा, जिनकी जात और कुल माही सिखदारी ने भई कदाई, मैं तिन ही को सरदार बनाऊं, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इस तरह गऊआं नू शेर बना दिता। ऐसा सिंह जो गऊ भी है, ऐसी गऊ जो शेर भी है, ऐसा संत जो सिपाही भी है, ऐसा सिपाही जो संत भी है। सिर्फ सिपाही होवे तो भ्रष्ट हो जाता है, जालम हो जाता है, सिर्फ संत होवे तो कमजोर हो जाता है, बुजदिल भी हो जाता है। दोहां दा मिश्रण, जैसे शरीर विच पानी भी है अग्नि भी है कट्ठे रह रहे हैं। इस तरह संत दा स्वरूप ते सिपाही दा स्वरूप धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कट्ठा कीता। संत सच दे अगों सजदा करे परमात्मा नु मत्था टेके पर सिपाही शस्त्र नु मत्था टेके। देखदे आ जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हुंदा है अगों कृपान खंडे पए हुंदे ने। सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नु मत्था टेकना है, शब्द स्वरूप परमात्मा दे ज्ञान नु मत्था टेकना है, पर सिपाही ने सिंह ने शस्त्र नु मत्था टेकना है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा अपना पावन पवित्र वाक भी है, अस कृपान खंडो खड़क तुबक तवर अरतीर सहब सरोही सहथी यही हमारे पीर। ए सहथी, ए बंदूक, ए तलवार मेरे पीर ने, मेरे गुरु ने। हैरानगी होंदी है सिपाही दा शिंगार, संत दा शिंगार सत है रब्बी गुण ने, सिपाही दा शिंगार शस्त्र है, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसा कीता कि शस्त्र संत कोल होवे, संत सिपाही होवे, सिपाही संत होवे, ताकि इसका शस्त्र मजलूम दी रक्षा वासे होवे, देश दी रक्षा वासे होवे, न कि किसे ते हिंसा करन वास्ते होवे, किसे ते जुल्म करन वास्ते होवे। ऐसी रूपरेखा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख नू दित्ती, हाथ विच कड़ा पा दिता, आखिया जद भी कोई मनुख कम करदा है सज्जा हथ अगे जांदा है, एक कड़ा तैनू प्रेरणा देवे कि ए हथ कदी गलत नहीं करनगे, इना हथां तो कोई गलत कम नहीं होवेगा। कछहरा एक पर्दा दिता जो किसे ना किसे रूप विच अज सारी दुनिया ने अपना लिया। शस्त्र इस वास्ते दिता किरपान पहनण नूं हर वक्त सिपाही दा जज्बा बनिया रहे। कंघा केसां दी सफाई वास्ते और केस कुदरती सुभावक ने, परमात्मा दी देन ने। अज ते विज्ञान भी ऐसा तस्लीम करन लग पिया है कि शरीर विच जो कुछ भी पैदा कीता है परमात्मा ने, उहदी लोड़ है, उसकी लोड़ है। तार्किक कह देंदे ने फिर नाखुन क्यों कटदे आ, नाखुन दा जो डेड भाग है जो मुरदा है वह कटिया जांदा है, जिंदा नाखुन कटिए खून निकलेगा, तड़पना होवेगी। जैसे लाश मुरदे नूं असी घर दे च नहीं रखते, मुरदा नाखुन नूं शरीर नाल नहीं रखते, कट के परे कर देंदे आ, इह ते लाश है। लाश नूं परे कीता जा रहा, कट के एक पासे कीता जा रहा, जिंदा नाखुन नूं नहीं। इस तरह वाल भी कुछ मुरदा हो जाते हैं, केस भी कुछ मुरदा हो जाते हैं, पर हत्थां नूं नहीं पता चलता किहड़े केस मुरदा ने। कंघा करदिआं मुरदा केस अपने आप झड़ जाते हैं, कंघा करदिआं मुरदा वाल अपने आप झड़ जाते हैं। हत्थां नूं नहीं पता चलता, अखां नूं नहीं पता चलता कि केसां दे च किहड़ा केस मुरदा हो चुका है, अपनी जड़ां गवा बैठा है, अपनी होंद गवा बैठा है। ये कंघे नूं पता चल जाता है, बिना दर्द दे वो झड़ जाता है, बाल झड़दे रहिंदे, नवें पैदा हुंदे रहिंदे। अगर इहनूं कुदरती ढंग नाल रखीए तो केस एक थां ते रुक जाते हैं, जैसे कि यह दाड़ा 30 साल दा इत्थे दा इत्थे है, ना वधदा है ना घटदा, पर जद इस नूं कोई कटे तो वधदा रहेगा, वधदा रहेगा, वधदा रहेगा। इहदा मतलब प्रकृति चाहती है, वरना जद कट दिता है तो नहीं होना चाहिए, पर होंदा है, होंदा है, प्रकृति ऐसा चाहती है। नर मदीन दी ये पहचान भी बनाई है परिपूर्ण परमात्मा ने, शीश दे केश ते स्त्री पुरुष दे कोजे ने, पर मुखड़े ते दारा केवल नर नूं दिता है, पुरुष नूं दिता है। इस हिसाब नाल दार्शनिक चिंतक ते मनो विज्ञानक भी ऐसा कहिंदे ने ये पुरुष दा शिंगार है और कायनात ते निगाह मारिए मदीन नर दे सामने फिक्की है फिक्की है। जितना रोबीला और सुंदर शेर है बबर भरवें बाल गर्दन दे शेरनी बिल्कुल फिक्की पैंदी है। जितना खूबसूरत मोर है मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं है। जितना खूबसूरत मुर्गा है मुर्गी उतनी खूबसूरत नहीं है। मुर्गे दे सामने बिल्कुल फिक्की पैंदी है। कलगी भरवीं गर्दन मुर्गे दी उदे सामने मुर्गी बिल्कुल फिक्की पैंदी है। नर चिड़ा खूबसूरत है मदीन इतनी नहीं। नर तोता खूबसूरत है मदीन नहीं। कायनात दे नगाह मारिए पुरश कुदरत दी तरफों शिंगारे होया है संवारे होया है शरीर करके भी। स्त्री दा शिंगार मां होना है उनू ए वड़ियाई कुदरत ने बख्शी है। उदी झोली विच ए औलाद दा शिंगार उसने पाया है। पर मुखड़े दी शिंगार दी घाट इस वास्ते जितना हार शिंगार एक स्त्री कर दी है पुरुष दी इतनी रुचि नहीं आती क्योंकि वह घाट महसूस कर दी है कमी महसूस कर दी है। ये पुरुष दा शिंगार है। हैरानगी है मोर ते अपने शिंगार तो बेजार नहीं है। लंबे लंबे पंख बड़ी खूबसूरती ये मोरनी कोल नहीं है। शेर दी गर्दन दे भरमे वाल इस तो बेजार नहीं है। लेकिन मनुख केवल नर मनुख मानव यही इस शिंगार नू उस्तरे दी भेट करके मदीन दा रूप बनांदा है। वरना परमात्मा ने नर ते मदीन दी शकल पहचान वास्ते अलग अलग बनाई है। सिर्फ मुखड़े ते दाढ़ी ना होवे ते कोई जनाना लिबास पहन लवे भुलेखे च पै सकदा है शायद मदीन होवे। लेकिन मुखड़े ते दाड़ा होवे कितना जनाना लिबास पहन लेवे तां भी मर्द दिखाई देगा पुरुष दिखाई देगा। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारत दा जो प्राचीन रूप सी केशाधारी ए सिख दी झोली दिच पाया और बज्जर कुरैत दस दिता केसां दी बेद भी ए नहीं करनी। भारत दा सारा साधु समाज अवतारी पुरुष जटाजूट सन केसाधारी सन। अज भी जद साडे वीर रामलीला करदे ने राम नूं पेश करना होवे तो सीस ते जूड़ा चाहीदा है। विश्वामित्र और विशिष्ट नूं पेश करना होवे ते मुखड़े ते लंबा दाड़ा चाहीदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो सिख नूं स्वरूप दिता सीस ते जूड़ा राम जैसा मुखड़े ते दाढ़ी विश्वामित्र जैसी विशिष्ट जैसी इस तरह संत सिपाही दा रूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने प्रदान कीता जो भारत दा आदि रूप सी। भारत दे प्राचीन अवतारी पुरुष शस्त्रधारी सन। धनुषधारी ने श्री राम चक्रधारी ने श्री कृष्ण गदाधारी ने हनुमान। गदा विष्णु कोल भी है परशुराम कोल कुल्हाड़ा है त्रिशूल शिवजी भी हद च रखते ने। सारे अवतारी पुरुष जोगी और संत जन शस्त्रधारी सन। भारत दी पुराणी ए रूप रेखा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख दी झोली च पा के संवार के शिंगार के कह दिता तू हुण सिंह है। सिख सिंह संत सिपाही है लोड़ से क्यों इदा ओ कारण भी दसते ने। जद कुछ एहलकारा ने वकत दे सताधारियां दे एहलकारा ने ऐसा कहा महाराज तुसी गुरु नानक दी गद्दी दे वारस थोड़े हाथ दे माला शोभा देंदी है तलवार नहीं बंदूक नहीं। उस वक्त जो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी च कहंदे ने ये उना दी रचना है उना दी बाणी है जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही दसवीं ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਦਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਤੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਚੂੰ ਕਾਰਜ ਹਮਾ ਹੇਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਤੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜੇ। ਚੂੰ ਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੇਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹਲਾਲ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਤੋ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਬਚ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ, ਬਚ ਗਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆਪ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਊ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜੋੜ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਗਊ ਜੈਸੀ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸੀ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਗਊ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਡੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ, ਫਾੜਨਾ, ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਊ ਵੀ। ਜਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਗਊ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਊ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਖਿਆ, ਤੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਬੋਲ ਨ ਮਾਨੇ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਯਾਦਤ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨੈ ਏਕ ਪਛਾਨੇ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਿਸ ਤਾਹਿਨ ਖਾਲਿਸ ਜਾਨੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਆਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ, ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ, ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਬੁਨਿਆਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਸਜਾਵਟ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਤ ਹੋਣਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਛ ਨਾਈ, ਏਕ ਜਨਮ ਹੈ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਰਾਮ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਪਿਆਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਣੋ ਭਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਚੋ ਮੇ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੋ ਜੈ ਆਸਾ। ਪੰਜ ਰਹਿਤਵਾਨੀਏ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋਵਨ, ਐਸੇ ਪੰਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸਰਵਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਸਦੀਵ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖਸਤ ਲਈ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ। ਜੈਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਜੈਸੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਖਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।